नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन को यिर्मयाह की पुस्तक उसके 32 अध्याय और उसके 9 पद से आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इसमें जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं तो वे समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से आप उनकी रक्षा करें, उन्हें अपनी शांति और आनंद प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए आप मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़िए। लिखा है, इसलिए मैंने उन अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तौल कर दे दिए। यहूदा के इतिहास के सबसे अधिक अंधकार के समय यिर्मयाह जमीन खरीदता है। मेरे विचार में उस समय जमीन के दलाल पूरे प्रयास में रहे होंगे कि किसी भी प्रकार से जमीनें बेच दी जाएं। यिर्मयाह ने वह जमीन क्यों खरीदी? वह दिखाना चाहता था कि वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है कि एक दिन इसराइल स्वदेश लौटेगा। यह एक ध्यान देने योग्य बात है। परंतु यिर्मयाह के मन में एक प्रश्न था जो उसके लिए अत्यधिक कठिन था। निम्न पदों में वह प्रार्थना में परमेश्वर से यह प्रश्न पूछता है। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा हुआ है, जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरियाह के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह के लिए अपना प्रश्न कठिन होगा, परंतु परमेश्वर के लिए तो वह आसान सा प्रश्न था। पद 18 से 32 में यिर्मयाह दोहराता है कि परमेश्वर ने संपूर्ण इतिहास में इसराइल को कैसे संभाला और कैसे उसकी रक्षा की, परंतु अब परिस्थिति बहुत गंभीर है। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसके 24 और 25 पद में हम पढ़ते हैं, अब इन दमदमों को देख वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कश्तियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ है और तू इसे देखता भी है। तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि यह नगर कश्तियों के वश में कर दिया गया है। ध्यान दीजिए कि यिर्मयाह ढोंगी नहीं था, वह आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर और इसराइल के अद्भुत सुधी लेने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता था। अब कसदी शहर पनाह के बाहर हैं और यरूशलेम पर अधिकार करने वाले हैं, परंतु परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि वह खेत मोल ले। उसे समझ में तो नहीं आया, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अतः वह परमेश्वर से प्रश्न करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर से प्रश्न पूछने में कोई बुराई नहीं है। आपके मन में संदेह है तो परमेश्वर से अवश्य पूछें। वह तो चाहता है कि हम उससे बात करें। कभी कभी हम ढोंगी स्वभाव देखते हैं कि परमेश्वर से प्रश्न पूछना अनुचित है। वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था और रोता भी था, परंतु प्रश्न पूछने से नहीं चूकता है। क्यों ना हम भी यर्मिया के समान सत्यनिष्ठ हो जाएं? उसने प्रार्थना में अपने संदेह परमेश्वर के समक्ष रख दिए। पद 26 से 44 में परमेश्वर यर्मिया की प्रार्थना का उत्तर देता है, और हम पढ़ते हैं यर्मिया की पुस्तक 32 अध्याय उसके 26 और 27 पद में। तब यहोवा का यह वचन यर्मिया के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर कहना आरंभ करता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? यर्मिया की पुस्तक 32 अध्याय उसके 36 से 40 पद में लिखा हुआ है, परंतु अब इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिसके लिए तुम लोग कहते हो वह तलवार महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है, यूं कहता है, देखो मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। आज परमेश्वर यरूशलेम को कसदियों के अधीन कर रहा है, और अपने ही समय में वह अपने प्रजा को और नगर को उनके हाथों से मुक्त करवाएगा। यर्मिया की पुस्तक 41 और 42 में लिखा हुआ है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। देख, यहोवा यूं कहता है, जैसे मैंने अपनी प्रजा पर यह बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूंगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए यह देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो, परमेश्वर यहूदा को दंड के अधीन कर रहा है, भविष्य में वह उन्हें अपनी बड़ी दया से मुक्ति दिलाएगा। यह उसकी प्रतिज्ञा है। मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर के पास आकर अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं तो वह हमारे मन वैसे ही प्रोत्साहित करेगा जैसे वह यिर्मयाह को प्रोत्साहित करता था। वह तो चाहता है कि हम उसके पास आएं। यहूदा का समय गहन अंधकार का था, परंतु परमेश्वर यिर्मयाह को सुरंग के पार दिखाता है जहां प्रकाश है। इस अध्याय में वह दाऊद के साथ बांधी वाचा की पुष्टि करते हुए कहता है कि वह दिन भी आएगा जब वह इसराइल को उसके साथ सहभागिता हेतु स्वदेश लौटा लाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 32 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 33 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इस अध्याय में परमेश्वर दाऊद के साथ बांधी वाचा को दोहराता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह इसराइल को अवश्य स्वदेश लौटा लाएगा और अपनी सहभागिता का अवसर देगा। तो आइए हम पढ़ें यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका एक पद। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यिर्मयाह अब भी बंदी गृह में है। तब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 33 उसके 2 और 3 पद में, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। यह पद 3 प्रायः गवाही की सभाओं में संदर्भित की जाती है। यह एक महान पद है, परंतु यदि इसे इस अध्याय के संदर्भ में स्मरण रखें तो अर्थपूर्ण है। उसके बंदी गृह में होने के उपरांत भी परमेश्वर उससे कह रहा है कि वह जमीन खरीदे। यर्मिया विश्वास करके जमीन खरीद लेता है, परंतु उसके मन में अनेक प्रश्न हैं। परमेश्वर यहूदा को बंधुआई में क्यों जाने दे रहा है? स्पष्ट कहूं तो मेरे विचार में विश्वासी के मन में संदेह उत्पन्न होना महान विश्वास का उदाहरण है। अब कोई पूछे कि यह कैसे? मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की संगति में हैं और उसके साथ चलते हैं, वह कैसा महान है और कैसे महान कार्य करता है कि कभी कभी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वह क्या कर रहा है। अतः हमारा प्रश्न होगा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? आपके मन में क्या ऐसे प्रश्न नहीं उठते हैं? मैं आपसे सच कहता हूं, मेरे मन में तो ऐसे प्रश्न उठते हैं। मुझे स्मरण है कि एक दिन संध्या समय मैं अपनी पत्नी और नवजात पहले बेटे को देखने के लिए जा रहा था। मैं वहां पहुंचा तो नर्स ने कहा, डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। वह गंभीर थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि शिशु स्वस्थ है, उसने मेरी पत्नी को अभी तक इस खबर को नहीं बताया। हम दोनों भीतर गए और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मेरे मित्रों, मैंने आकाश की ओर देखा, सितारों को देखा। मेरे मन में एक प्रश्न था। आप जानते हैं वह प्रश्न क्या था? क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे बीच में प्रभु हमें आशीष के रूप में बेटी दे, परंतु उसने हमें बेटा दिया। मैं आज भी ऊपर यह देखकर प्रश्न पूछता हूँ। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि कई बार हम जिस चीज को चाहते हैं ऐसा नहीं होता है तो हम प्रश्न कर बैठते हैं। मैं कई बार प्रभु से बात करता हूँ और उसे अपने संदेह को सुनाता हूँ, परंतु मैं उसे यह भी कहता हूँ कि मैं उसमें विश्वास करता हूँ। मैं प्रसन्न हूँ कि यर्मिया ऐसा मनुष्य था। धर्मशास्त्र में अन्य मनुष्य भी हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्रश्न पूछे हैं। हबकूक की पुस्तक में हम देखते हैं कि हबकूक ने भी अनेक प्रश्न पूछे हैं। सच तो यह है कि उसकी संपूर्ण पुस्तक एक विशाल क्यों प्रश्न चिन्ह क्यों से भरा है। योना ने भी परमेश्वर से प्रश्न पूछे थे। मेरे मित्रों, ऐसे प्रश्न पूछना विश्वास की कमी नहीं दर्शाता है, परंतु यह नाटक करना कि हम परमेश्वर की इच्छा स्वीकार करके उसकी अधीनता में चल रहे हैं, जबकि हमारे मन की गहराइयों में अनेक प्रश्न हैं, ढोंग है। तो मेरे विचार में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ निष्कपट व्यवहार करें। यह उसकी प्रतिज्ञा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अब परमेश्वर उनके साथ दाऊद की वाचा जो दूसरे शामुल की पुस्तक में है फिर से पुष्टि करता है। उसने दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि उसकी गद्दी पर बैठने वाला सदैव उपस्थित रहेगा। यह वाचा प्रत्येक भविष्यद्वक्ताओं का मुख्य गान बन गई थी, जैसे कि रिकॉर्ड फंस गया हो। वे सब इस वाचा का संदर्भ देकर इस पर निर्भर करते थे। तो आइए हम यर्मिया की बात भी सुने। यर्मिया की पुस्तक 33 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इसराइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में, प्रभु का दिन, दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा। अब तक एक को छोड़कर कोई भी धर्म की डाल नहीं थी। वह जो बेतलहम में जन्मा था, वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। अब तक तो ऐसा कोई शासक नहीं हुआ है। यर्मिया की पुस्तक 33 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यह हुआ हमारी धार्मिकता। यदि आप में और मुझ में कोई धार्मिकता है तो वह केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही है, वही हमारी धार्मिकता है। यर्मिया की पुस्तक 33 अध्याय के 17 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा यूं कहता है, दाऊद के कुल में इसराइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। यह पुरुष आपके विचार में आज कहाँ है? आज इस संसार में एक भी यहूदी नहीं है जो दाऊद के सिंहासन का दावा करे। उसका दावेदार तो उस समय परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, जैसा भजन संहिता 110 में और उसके एक पद में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार करने के लिए मनुष्यों को सुधार रहा है। वह तैयारी कर रहा है कि अपने पुत्र को इस जगत के सिंहासन पर बैठाए। यर्मिया की पुस्तक 33 अध्याय उसके 19 से 22 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा का यह वचन यर्मिया के पास पहुंचा, यहोवा यूं कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के संग बंधी रहेगी। जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। इस भविष्यवाणी के समय सिद्दिकिया यहूदा का राजा था। वह ऐसा भ्रष्ट राजा था जैसा कभी कोई मनुष्य न रहा हो। नबूकदनेस्सर उसकी आंखें निकालकर उसे बंधुआई में ले जाएगा। आप सोचेंगे कि दाऊद के वंश का अंत हो गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अन्य कोई और जाति होती तो उसका राजवंश समाप्त हो जाता। आज बेबीलोन के सिंहासन का दावेदार कोई भी नहीं है। सिकंदर महान के सिंहासन का दावेदार भी कोई नहीं है। मिस्र में आज कोई फिरौन नहीं है, परंतु दाऊद के वंश में आज एक दावेदार है जो उसके सिंहासन पर बैठेगा। परमेश्वर कहता है कि वह एक दिन उसे जगत का राजा बनाएगा। यह एक महान भविष्यवाणी है और अनदेखा करने के लिए या शब्दों से खेलने के लिए अत्यधिक कठिन है। परमेश्वर जो कहता है वह उसको करता भी है। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 33 भी समाप्त होता है और अब हम अध्याय 34 में देखते हैं, जिसका विषय है सिद्दिकिया के बंदी बनाए जाने की भविष्यवाणी। रकाबी परमेश्वर की आशा मानते हैं, यहोयाकीम परमेश्वर के वचन का विनाश करता है। तो आइए हम पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 34 अध्याय उसके 1 से 5 पद में लिखा है, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर अपनी सारी सेना समेत और पृथ्वी के जितने राज्य उसके वश में थे उन सबों के लोगों समेत यरूशलेम और उसके सब गांव से लड़ रहा था, तब यहोवा का यह वचन यर्मिया के पास पहुंचा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जा और यहूदा के राजा सिद्दिकिया से यह कह, यहोवा यूं कहता है, देख मैं इस नगर को बेबीलोन के राजा के वश में कर देने पर हूं और वह इसे फूंकवा देगा, तू उसके हाथ से न बचेगा, निश्चय पकड़ा जाएगा और उसके वश में कर दिया जाएगा और तेरी आंखें बेबीलोन के राजा को देखेंगी और तुम आमने सामने बातें करोगे और तू बेबीलोन को जाएगा। तो भी हे यहूदा के राजा सिद्दिकिया, यहोवा का यह भी वचन सुन जिसे यहोवा तेरे विषय में कहता है, तू तलवार से मारा ना जाएगा, तू शांति के साथ मरेगा और जैसा तेरे पितरों के लिए अर्थात जो तुझसे पहले राजा थे उनके लिए सुगंध द्रव्य जलाया गया वैसे ही तेरे लिए भी जलाया जाएगा और लोग यह कहकर हाय मेरे प्रभु तेरे लिए छाती पीटेंगे, यहोवा की यही वाणी है। सिद्दिकिया ने प्रजा के साथ समझौता किया कि सब इसराइली दास स्वतंत्र किए जाएं। तब हम पढ़ते हैं यर्मिया 34 उसके 15 और 16 पद में, तुम अभी फिरे तो थे और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करा के जो काम मेरी दृष्टि में भला है उसे तुमने किया भी था, और जो भवन मेरा कहलाता है उसमें मेरे सामने वाचा भी बांधी थी, पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे उन्हें तुमने फिर अपने वश में कर लिया है और वे फिर तुम्हारे दास दासियां बन गए हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे दृष्टि में भला है। देखिए निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय उसके 2 पद को, परंतु सिद्दिकिया ने इस वाचा का मान नहीं रखा। परमेश्वर ने उसके बारे में कहा, मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया। मनुष्यों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करके यहूदा का राजा होने के नाते सिद्दिकिया संसार को दिखा सकता था कि वह भिन्न है और वह जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की सेवा करता है, परंतु उसकी प्रतिज्ञा एक दिखावा थी। उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, उसने अपना नाम खराब ही नहीं किया, उसने परमेश्वर का नाम भी अशुद्ध किया। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान के जीवन को ही तो संसार देखता है। परमेश्वर का नाम और उसके वचन का प्रसारण ऐसे लोगों से अधिक हानि उठाता है जो उसको जानने का दावा करते हैं। अविश्वासियों से अधिक उसके नाम को लेने वाले उसके काम को हानि पहुंचाते हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया। यर्मिया की पुस्तक 34 अध्याय उसके 19 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच से होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगे। मैं यहूदा के राजा सिद्दिकिया और उसके हाकिमों को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों अर्थात बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दूंगा जो तुम्हारे सामने से चली गई हैं। बछड़े के भागों के बीच से होकर गए, उस युग में वाचा बांधने या समझौता करने की यह एक रीति थी कि बलि किए हुए बछड़े को दो भाग करके एक इधर और एक उधर रखकर उनके मध्य से निकलकर हाथ मिलाते थे। अब्राहम के साथ भी परमेश्वर ने ऐसी ही वाचा बांधी थी। यह आज के समय में कोर्ट में जाने के जैसा है। सिद्दिकिया, हाकिम, याजक और साधारण जनता सब ने परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन किया। उन्होंने दासों को स्वतंत्र नहीं किया, अतः परमेश्वर ने उन पर दंड की घोषणा की। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 34 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 35 से जारी रखेंगे। अध्याय 35 में इस विश्वासी शेष समुदाय के साथ रकाबी भी थे, परंतु वे यहूदा के विपरीत आचरण प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने हमें यह वचन इसलिए दिया है कि हमें स्मरण रहे कि उसकी प्रजा में बचे हुए लोग सदा रहेंगे जो उसके गवाह होंगे। वह संसार को अपने गवाहों से रहित कभी नहीं रहने देगा। संसार के इतिहास के मध्य महाअंधकार के समय अर्थात भावी महाक्लेश के समय भी 144,000 इसराइली भूमिगत हो जाएंगे, परंतु दो गवाह तब भी परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। शैतान के पूर्ण नियंत्रण में भी परमेश्वर कहता है, मैं दो गवाह खड़े करूंगा जो अछूते होंगे, तुम उन्हें स्पर्श भी न कर पाओगे जब तक कि उनका कार्य पूरा न हो जाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर सच्चा है और वह कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
परमेश्वर तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीव यीशु परमेश्वर। जिंदगी की राहों में साथ है तेरा, जिंदगी की राहों में साथ है तेरा। तेरे बिन दिखे मुझे घोर अंधेरा, आया है रंग तू एक सवेरा, आया है रंग तू एक सवेरा। धन्य है, पवित्र है नाम यीशु तेरा, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर। तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर। परमेश्वर।